नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी प्रयागराज से, स्वागत है आपका।
नमस्कार सर।
तो अब दो फेज हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या चल रहा है यहाँ?
उत्तर प्रदेश में एक तो मतलब जैसे ना मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ ना आप सेफोलॉजिस्ट हैं,
तो
और
मैं तो हूँ
नहीं आप सेफोलॉजिस्ट इसलिए हैं क्योंकि आपने
तो
जिलों में चुनाव, नहीं आपने जिलों में चुनाव कराए हैं और मैंने जिलों में चुनाव देखे हैं, बस उतने ही सेफोलॉजिस्ट हैं हम दोनों। लेकिन
हमारे
फिर
तो
भी एक
बाकायदा टीम ग्राउंड लेवल पे जाके सर्वे करके और उसका तो हम प्रेडिक्शंस देते हैं।
मेरे पास तो टीम नहीं है सर, लेकिन एक मोटी सी चीज, चलिए हम मान लेते हैं हमारे व्यूअर्स तो नहीं है सेफोलॉजिस्ट। एक जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि 2+2=4 होता है, इसको जानने के लिए अर्थशास्त्री होने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार 2000 इसको एक कंप्लीट पिक्चर ले लें और बहुत केवल एक मिनट में ले लें। 2014 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, समाजवादी पार्टी अलग लड़ती है, बसपा अलग लड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी 73 सीट जीत लेती है, 7 सीटें बीजेपी हारती है, 5 ये समाजवादी पार्टी की हारती है और 2 सीटें ये अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की हारती है, बहुजन समाज पार्टी शून्य पे चली जाती है। 2019 तो अच्छा साहब मैं 30 साल से ये 35 साल से एक बात सुन रहा हूँ साहब कि जिस दिन सपा बसपा साथ आएंगी उस दिन सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं साहब। हाँ अब ये एक 2019 में साथ आ जाते हैं, तो एक बड़ी चीज इंटरेस्टिंग जो निकल के आती है कि अंक गणित केमिस्ट्री में ही नहीं कन्वर्ट होती, मतलब जमीन की केमिस्ट्री कुछ और होती है, अंक गणित कुछ और होता है। आपने सोचा समाजवादी पार्टी से यादव आ जाएगा, बहुजन समाज पार्टी से दलित आ जाएगा, सारे ओबीसी आ जाएंगे, मुसलमान वोट का डिवीजन नहीं होगा, और हकीकत यह है कि उसके बाद 80 में से कुछ नहीं तो 78 सीटों का फैसला तो हो जाएगा। बातें हो रही थी साहब, बता रहे थे कि आ कैसा है वैसा है, भारतीय जनता पार्टी अगर जीरो पर चली जाए तो कोई बहुत बड़ी बात है वगैरह वगैरह। लेकिन एक एक होती जमीन पे केमिस्ट्री। अब आप जमीन पे जब आप केमिस्ट्री देखें आप जाके, तो आप जाके देखते हैं कि यादवों जब जब मैं SC ST के मुकदमे निकालता हूं तो उसमें 85% ओबीसी के खिलाफ, तो वो जमीन पे केमिस्ट्री कैसे कन्वर्ट होगी? आप देखें उन 85% जो ओबीसी के खिलाफ उसमें भी मुझे लगता है कि 75% यादवों के खिलाफ, तब वो यादव दलित केमिस्ट्री कैसे आए? जब आप जाट लैंड में जाते हैं तो आप देखते हैं SC ST मुकदमे जो हैं वो जाटों के खिलाफ है, गुजरों के खिलाफ है, वो केमिस्ट्री कैसे आए? जब आप मुजफ्फरनगर के आसपास एरियाज में जाते हैं तो आप जाट और मुस्लिम्स का वो 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा सामने आ जाता है जिसके घाव हैं जल्दी, और दोनों ही तरफ घाव हैं, ऐसा नहीं केवल जाटों के पास घाव है, मुसलमानों के पास भी घाव है, उनको भी लगता है उनके साथ बड़ी जाती है और जाटों को तो यकीनन लगता ही है। मैं अक्सर कहता हूं कि अखिलेश यादव आप देखिए वेस्टर्न यूपी में इनको कोई जल्दी चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाता। 3 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए उस पहले उस दौर में, रामपुर कैराना इकरा हसन, रामपुर से मौलाना नदवी और तीसरा
सहारनपुर
कौन सा क्या
कांग्रेस का था,
सहारनपुर इमरान मसूद, तीनों में से एक भी कैंडिडेट के लिए अखिलेश यादव नहीं गए। क्यों नहीं गए? आप सोचिए आप अपने उम्मीदवारों के लिए नहीं जा रहे, कारण यह है कि तीनों कैंडिडेट ने हाथ जोड़ लिया कि साहब आप ना आए, आप ना आए। नहीं नहीं मैं इसका सबूत दे रहा हूं सर, मैं अक्सर कहता हूं दावा बिना दलील के नहीं होता। मेरे एक दोस्त सैयद कासिम वो कहते हैं दावा बिना दलील के नहीं होता, दलील मैं दे रहा हूं, दावा कर रहा हूं दलील भी दे रहा हूं। खतौली में उपचुनाव होता है, साथ में मैनपुरी में उपचुनाव होता है, अड़ोस पड़ोस में। जयंत चौधरी खतौली के सारे पोस्टरों से अखिलेश यादव का नाम फोटो हटा देते हैं और अपने चुनाव में अखिलेश यादव को घुसने नहीं देते, खुद मैनपुरी नहीं जाते अखिलेश को वहां, जबकि वो गठबंधन की चुनाव था। कारण मैं हमेशा कहता हूं कि वेस्टर्न यूपी में अखिलेश यादव साबरमती एक्सप्रेस की तरह है, जिनको देख के गोधरा याद आ जाता है, अखिलेश यादव को देख के मुजफ्फरनगर दंगों के घाव हरे हो जाते हैं दोनों ही पक्षों के। तो साहब इनके कैंडिडेट्स ने हाथ जोड़ लिया सरकार हम अपनी सीट लड़ लेंगे आप ना पधारे, जैसे कोई जमाने में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी से कहा था कि साहब राहुल गांधी ना आए तो हम पंजाब जीत लेंगे, राहुल गांधी नहीं है उन्होंने पंजाब जीत भी लिया, वो अलग बात है कि इसकी कीमत उनको अपनी मुख्यमंत्री पद की गद्दी गंवा के देनी पड़ी। ये बात गांधी परिवार को बर्दाश्त नहीं हुई कि साहब बिना हमारे जीत रहे हो और वो भी डंके की चोट पे कह भी रहे हो कि राहुल गांधी ना है। तो इसी तरह ये आपने 2019 का चुनाव लड़ा, 2019 में बहुजन समाज पार्टी 5 से 10 पे पहुंच गई, सपा 5 की 5 पे रही, कांग्रेस अमेठी और रायबरेली में, अमेठी हार गई, रायबरेली उसने रिटेन कर ली, तो यानी 10, 5, 15, 1, 16 64 सीट भाजपा गठबंधन फिर से जीत गया। भाजपा गठबंधन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें 2 सीटें अपना दल की भी थी, अनुप्रिया पटेल वाली, अपना दल सोने लाल। अब आप जब आते हैं 2024 में, तो उत्तर प्रदेश की एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां पे आपको 1 लाख से कम दलित वोट मिल रहा। वो तमाम वोटें जो गठबंधन को मिले थे 2019 में, वो खसारा कौन पूरा करेगा, वो घाटा कहां से आएगा, वो लॉस कहां से रिकवर होगा? वो जो तमाम लंबे लंबे दावे कर रहे हैं कि भाजपा को साफ कर देंगे एंड ऑल दैट, तो आप बताएं कि वो घाटा जो कि 2019 में, पहली बात, दूसरी बात, 2019 में जो एक भी मुस्लिम वोट नहीं छटका, क्यों? सपा बसपा साथ थी। आज आप देख रहे हैं कि जगह जगह पे मुस्लिम वोट, आज मायावती ने तो कमाल कर दिया साहब, मायावती ने 30% मुसलमानों को टिकट दे दिया, 30% करीब 24-25% टिकट दे दिया। अब आप, अब जाहिर सी बात है, ये वोट किसका काट रहे? डेफिनेटली कहीं ना कहीं वोटों का डिवीजन तो आप देखेंगे।
समाजवादी ने तो सिर्फ 4 टिकट दिए शायद,
4 टिकट समाजवादी। देखिए, एक जमाना था 2014 में 44 मुस्लिम कैंडिडेट यहां से खड़े हुए थे, वो घटते घटते 12-14 पे आ गया था। ये तो कहिएगा बसपा के टिकट हटा दिए जाए तो कुल 4 मुसलमान लड़ रहे सपा से। समाजवादी ने इस बार 2, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने
मेरठ जैसी, मुरादाबाद और मेरठ जैसी सीटों पर उन्होंने टिकट नहीं।
सब मेरठ में आज तक ऐसा कोई चुनाव हुआ ही नहीं कि कोई पार्टी एक मुस्लिम कैंडिडेट ना लड़ा, इस बार किसी ने नहीं लड़ाया, किसी ने नहीं लड़ाया। अब महाराष्ट्र में देख लीजिए मुस्लिम कैंडिडेट नहीं, कहीं मुस्लिम कैंडिडेट नहीं लड़ाए जा रहे, कुछ भी हो। अब आपने एक नया एक्सपेरिमेंट किया कि साहब हमने मुसलमानों के वोट तो लेने, हमें मुसलमानों को टिकट नहीं देना, क्योंकि मुसलमानों को टिकट देगा भारतीय जनता पार्टी सामने है, ध्रुवीकरण हो जाएगा। एक जमाने में हमें याद है 2014 में 2015 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल का एक ऑडियो वायरल हुआ था कि हमको मुसलमानों को टिकट देने की जरूरत क्या, उनके पास ऑप्शन क्या हमारे सिवा। तो उस समय लगा था कि अरविंद केजरीवाल को इससे बहुत लॉस हो जाएगा, लॉस नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने सही कहा था, मुसलमानों के पास ऑप्शन नहीं थी। मुसलमानों ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक वोट बैंक, एक हथियार के रूप में ऐसा बना लिया है कि अब कोई आदमी उनको टिकट भी देने की जरूरत महसूस नहीं करता। यार तुमने तो वो एंटी बीजेपी वोट डालना ही है, टिकट दे तो, और टिकट ना दे तो। उत्तर प्रदेश में एक नई चीज शुरू हो गई, दरी बिछाने वाली, कहा जाएगा कि साहब आप तो दरी बिछाने के लिए
हम ये इस बार वैसे मैं आपको सप्लीमेंट करूंगा, आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि राजस्थान में भी इस बार यही हुआ। राजस्थान में परंपरा रही है कि कांग्रेस सदैव से एक मुसलमान को तो टिकट देती है, जानती है कि हारने के लिए दे रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान का टिकट गारंटेड रहा है हमेशा राजस्थान में। इस बार
भी नहीं हुआ, इस बार वो भी नहीं हुआ, महाराष्ट्र में नहीं हुआ साहब, महाराष्ट्र में नहीं हुआ। तो कुल मिला आप देखे ना, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, वहां तो जो उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष थे उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा जब आपको टिकट ही नहीं देना मुझे खामखा बैठा रखा है आपने। एक जमाने में जिन्ना ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को शो बॉय ऑफ कांग्रेस कहा, तो अभी सब शो बॉयज ऑफ कांग्रेस रह गए ना, तो आप वहां पे शोपीस बना के बैठा दिए गए। और इसके इसका दोष पूरी तरह मुस्लिम समाज पर जाता है, क्योंकि जब आपने एक बार कह दिया कि हमको पार्टी नहीं देखनी, हमको मुद्दा नहीं देखना, हमको आरक्षण से मतलब नहीं है, हमको स्कूल अस्पताल रोडवेज सड़क से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ भाजपा के खिलाफ वोट देना है, तो फिर वही अरविंद केजरीवाल की वो बात कि तुम जाओगे कहाँ। अभी वो शायद मंजूर साहब यहाँ पे पहले मंत्री हुए हैं समाजवादी पार्टी से, तो बात हो रही थी उनसे, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मुझसे कहा मुसलमान जाएगा कहाँ, तो शायद मंजूर साहब ने कहा, मैंने उनसे कह दिया साहब वो तो जहन्नुम में चला जाएगा, आपके साथ नहीं जाएगा। पर शायद मंजूर साहब गलत साबित है, नहीं लेकिन वो गलत साबित है सर, इसको देखिए, ही वाज प्रूव्ड रॉन्ग। वेस्टर्न यूपी में जहां पे यादव पॉपुलेशन है ही नहीं, जहां पे दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बसपा को जिता सकता था, मुसलमान आज भी साइकिल पे वोट दे रहा है, आज भी साइकिल पे बटन दबा रहा है उनका। इसका कारण है, मैं इसको हमेशा कहता हूं कि मायावती 30% नहीं 50% मुसलमानों को टिकट दे दे, मायावती को मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। इसका एक सिंपल सा कारण है, मायावती कुछ भी कहिए एक लॉ एंड ऑर्डर की बात करती थी। मुलायम सिंह कहते थे मुसलमानों को कट्टा रखने का हक है, मुसलमान कमजोर कौम है, अगर वो कट्टा बम रखता है तो ठीक रखता है। वो मुसलमान रेपिस्ट को कहते थे लड़के हैं गलती हो जाती है, वो इलाहाबाद आके अतीक अहमद को अपने साथ मंच पे खड़ा करके कहते हैं कि अतीक अहमद गंगा मैया जितने पवित्र हैं। ये चीज मुसलमानों को भावनात्मक तौर पे समाजवादी पार्टी से जोड़ती है, इमोशनल लेवल पे जोड़ती है।
अतीक के कुत्ते से भी हाथ मिला लेते थे वो, तो
कुत्ते से भी हाथ मिलाते। तो ये चीज एक चीज इमोशनल कोशेंट है। मेरा दावा है कि ये मुलायम और ममता और केजरीवाल को छोड़ के कोई नहीं कर सकता, लालू यादव भी एक लिमिट के आगे नहीं कर सकते। मतलब आप देखिए, आप जिस तरह की बातें कर रहे, तो इसकी वजह से मायावती 30% नहीं 50% मुसलमानों को टिकट दे दे, मुसलमान वोट अभी भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जबकि आप देखिए, आप 14 हारे 17 हारे 19 हारे 22 हारे निकाय हारे, सब हार गए आप। आपने आपने मुसलमानों ने आपको 91% वोट देके आपसे सिर्फ एक तबक्को की कि साहब आप भारतीय जनता पार्टी को रोक दे। आपसे नहीं, वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पा रहा है। वो हमारे ओवैसी की एक सभा थी साहब, तो ओवैसी ने आके प्रयागराज में कहा कि भाई मुसलमानों, मुझे मालूम है कि तुम लोग यहाँ पे मुझे सुनने के लिए आए हो, वोट मुझको नहीं दोगे, वोट तुम समाजवादी पार्टी को ही दोगे, दे लो एक चुनाव दो चुनाव और दे लो, लेकिन एक लाइन में समझ लो कि इनसे ना हो पाएगा, जब इनसे पूरी तरह निराश होना तो मेरे पास आ जाना, फिलहाल इनसे ना हो पाएगा। तो मुसलमान कहता ठीक है, अखिलेश से ना हो पाएगा तो तुमसे भी तो ना हो पाएगा ओवैसी मियां, खाली मुसलमानों को वोट लेके तुम हमको कहां ले जाओगे, हैदराबाद थोड़ी ना है, 65% यहाँ पे 61% 62% मुस्लिम पॉपुलेशन है। कुल मिला के एक गणित जो मैं कह रहा था कि दलित वोटों का खसारा कहां से पूरा होगा, लॉस कहां से पूरा होगा, मुस्लिम वोटों का बंटवारा उसका लॉस कौन पूरा करेगा, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को तय करता है। अब उत्तर प्रदेश की बड़ी सीट हो देखो
जो चुनाव, इसी में आपसे थोड़ा सा बीच बीच में प्रश्न पूछता चलूंगा मैं आपसे। ये जो आप बात कही कि भाई मुसलमान ने, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, दे हैव पेंटेड देमसेल्व्स इनटू अ कॉर्नर, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है बड़ा आसान हो गया, वो लगातार बना भी रहे और जीत भी रहे। इस बार जिस तरह से इन्होंने अपना ये केस, आप इनका तो केवल हमें वोट लेना है और इनसे कोई हमें काम नहीं है, इनको सीट भी नहीं देनी है, इनको टिकट भी नहीं देनी है, मुरादाबाद और मेरठ जैसी सीटों पर भी इनको हमें नहीं लड़ाना है, ये सब तय करने के बाद में आपको लगता है कि थोड़ा वोट परसेंटेज मुसलमान का कम हुआ है इस बार पहले दो फेज में?
सब इस बात का आप उनको जिसे कहना चाहिए क्रेडिट दें, क्रेडिट दें, मतलब जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है एक डेस्परेशन मैंने देखा हूं, अरे यार अब भी बीजेपी आ गई तो क्या होगा, हालांकि कुछ नहीं हुआ 2014 में, क्या हुआ 2019 में, क्या हुआ योगी आदित्यनाथ में विधानसभा ने अखिलेश यादव को चुनौती दी कि देखे साहब भाई लखी आप देखने 18% मुसलमानों को 32% 34% मकान दिए हमने, तो साहब मकान भी आपको मिले, टॉयलेट भी आपको मिले, पैसे भी आपको मिले, उज्ज्वला भी आपको मिली, हर चीज में आपको नौकरी भी, सब कुछ जगह आपको मिला, लेकिन उसके बाद भी तो आपने देखा है सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, वी गॉट एवरीथिंग विल स्टिल नॉट वोट फॉर बीजेपी। नहीं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे वाली बात भी बहुत बुरी नहीं, मत दीजिए, हमको भाजपा को हराना है, हमको भाजपा को हटाना है। तो ये जो एक इमोशनल उनका वो कनेक्ट है,
वो तो डॉक्टर अम्बेडकर ने डिस्क्राइब किया हुआ है पहले भी, और अगर आप इनकी किताबें पढ़ें तो जो बड़ी किताब और उसकी जो छोटी किताब है कुरान और हदीस पढ़ें, तो वो जो साइकोलॉजी है वो तो स्पष्ट है ना, उनके लिए ये जिंदगी मैटर नहीं करती है, जिंदगी जो है मौत के बाद शुरू होती है, और मौत के बाद अगर जन्नत जाना है तो सबसे पहले जो है वह काफिर को जब तक हराया नहीं तब तक तो फिर वो कुछ मिलेगा नहीं ना, तो इसलिए
गाजी
की सहूलियत गाजी होना है,
गाजी होना। देखिए वो पाकिस्तान के एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं हसन निसार, वो अक्सर कहते हैं कि यार जिसको देखो बताता रहता है जन्नत में क्या मिलेगा, अरे एक मौलाना ये भी तो बताया दुनिया में क्या मिलेगा, आपने दुनिया को एकदम खारिज कर रखा है, जिसको देखो जन्नत की बात करता है सब में दुनिया खारिज कर रखा है। बात देखिए अम्बेडकर एक
बात, वो सारे मौलाना जो है वो सारे मौलाना जिंदगी के मजे लूटते हैं, वो फौरी तौर पर जन्नत जाने के लिए तैयार नहीं है, दूसरों को गाजी बनाने के लिए शहीद बनाने के लिए तैयार,
जिंदगी के वो मजे लूटते हैं जो कानूनन अपराध है, जिंदगी के वो मजे लूटते हैं जो कानूनन अपराध है, लेकिन बाकियों को जन्नत भेज रहे हैं, बाकी सब जन्नत के लिए तैयार है, सब जन्नत नशी हो जाए। अब उसका मतलब छोड़ें, अब उसका क्या ही हो सकता है, अंबेडकर ने तो उसी जमाने में कह दिया था, उसी जमाने में कह दिया था उन्होंने, जब उनकी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान पढ़े साहब, जिसमें वो मोपला राइट्स डिस्क्राइब करते हैं, वो कहते हैं मोपला वॉज नॉट अ रिवोल्ट, मोटना मोपला को रिवोल्ट नहीं कहना चाहिए, इट वॉज नॉट इवन अ दंगा, इट वॉज अ मोपला जेनोसाइड। वो कहते हैं जहाँ वो मोपला को बड़े डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा अपनी किताब में कि गर्भवती औरतों के पेटों को काट कर उनसे बच्चों को निकाल के वहीं जिबा कर दिया, काट दिया। तो आप ये डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। अच्छा, आज की तारीख में कुछ माहौल ऐसा है कि अगर अम्बेडकर साहब ने कुछ कहा है तो फिर कोई काटने वाला है नहीं, तो मिला तो वो आप समझ लें।
जी हाँ जी हाँ, आप अगर देखें, मैंने एक मेरी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और 50,000 कॉपी बिकी है उसकी, अनब्रेकिंग इंडिया, तो उसमें जो ये इस तरह के सारे आर्गुमेंट मैंने अंबेडकर को कोट करके किए, और उसकी वजह से
बेस्ट है।
मेरे
आप गांधी को कोट करेंगे, आप गांधी को कोट करेंगे उड़ा देंगे, आप बोस को करेंगे, नेहरू को करेंगे, आप सावरकर करेंगे, आप किसी को कोट करेंगे उड़ा देंगे। अंबेडकर को अगर आप कोट करेंगे तो सब अंबेडकर पे आखिरी बार अगर कुछ आलोचनात्मक लिखा गया तो अरुण शौरी ने 1991-92 में वर्शिपिंग फॉल्स गॉड लिखी थी, और मैं अक्सर कहता हूं कि दलित चिंतकों ने आज तक उसका कोई रिबटल नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। इट वॉज अ फैसिनेटिंग बुक, आपने देखी होगी सर, और आज तक उसका जवाब नहीं आया। बहरहाल, अब एक जो बचा हुआ चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उसमें आज जो एक डेवलपमेंट हुआ है, इसका पता लग रहा है, अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, पर कैसरगंज से, जहां से बहुत ज्यादा ब्रजभूषण शरण सिंह की उम्मीदवारी को लेकर एक बहुत वो क्रिएटेड था कि साहब होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कैसरगंज से माना जा रहा है कि आज अनाउंसमेंट हो जाएगा। इसलिए भी हो जाएगा साहब कि कल नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। अब आज से लेट क्या होगा, अब अगर अमेठी का होना है, रायबरेली का होना है, कैसरगंज का होना है, तो बाजी होना है ना। अभी परसों तो नहीं हो सकता, अब कल के बाद कुछ हो ही नहीं सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह की अपनी साबिक पर्सनालिटी है, भारतीय पार्लियामेंट में, भारतीय संसद में बहुत रेयर लोग ऐसे हुए हैं जैसा ब्रजभूषण का प्रोफाइल। वो एक दबंग है, वो एक जैसे बाहुबली है, तो बाहुबली है और उनपे माफिया के भी आरोप है, लेकिन साहब वो गोंडा से भी जीत जाते हैं, वो बहराइच से भी जीत जाते हैं, वो कैसरगंज से भी 2-3 बार जीत जाते हैं, वो टाडा में अंदर रहते हैं जेल में तो अपनी पत्नी को जिता देते हैं, और टाडा में उनपे गंभीर आरोप, कैसे आरोप, दाऊद इब्राहिम से गठजोड़ का आरोप, उसके बाद वो अपनी पत्नी को जिता देते हैं, वो समाजवादी पार्टी से भी जीत जाते हैं, वो भाजपा से भी जीत जाते हैं। उनका साहब एक नंदनी नगर करके है, उनके पास 250 स्कूल्स कॉलेजेस है, कई लाख लोग उनसे सीधे रोजी रोटी के हवाले से जुड़े हैं, एक नहीं 3-4 सीटों पर असर डालते हैं, तो आप उनको कैसे नजरअंदाज करेंगे। अब आप देखें, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कैसरगंज की सीट पूर्णतः ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, ये उन कुछ चंद सीटों पर है जिसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण मतदाता है, 4 लाख से ज्यादा, लेकिन ब्रजभूषण उसको भी, ब्रजभूषण का हर समुदाय में बहुत अच्छी पकड़ दी है। आज बसपा ने वहां से एक ब्राह्मण उम्मीदवार घोषित किया है, कहा जाता है कि साहब नरेंद्र पांडे, लेकिन नरेंद्र पांडे का वो कद नहीं है कि वो ब्राह्मण वोट बहुत काट सके। वैसे भी आप, मैं अक्सर कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ एक क्षत्रिय मुख्यमंत्री के लिए 89% क्षत्रियों ने वोट दिया और 91% ब्राह्मणों ने वोट दिया, तो आप देखिए 91% ब्राह्मण, मैं 2022 की बात कर रहा हूं, तो उनका अपना इस समय जिस तरह अगर मुसलमान विपक्ष का बंद हुआ है तो ब्राह्मण भी इस समय भाजपा के साथ है, उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, जो खुश है वो भी, जो नाराज है वो भी। अब ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह का आज माना जा रहा है कि साहब उनके साहबजादे हैं, उनको टिकट उनको बताया जा रहा है, करण भूषण शरण, अब वो करण भूषण भी उन्हीं की तरह कुछ उत्तर प्रदेश कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष वगैरह है। एक बात और कही जा रही थी साहब की, राजपूत नाराजगी है उसको हैंडल करना है, अगर ब्रजभूषण का टिकट काट दिया गया तो कैसे दिक्कत आ सकती है। तो मैं इसमें एक बात कहता हूँ, दो बातें, वो उसमें धनंजय सिंह से भी जोड़ के देखते हैं, इतना आसान नहीं है। देखिए, राजपूत नाराजगी का जो नैरेटिव, वो एक चलाया गया एक नैरेटिव, मैं अक्सर कहता हूँ सर बताइए मैं गलत कह रहा हूँ, आपने कहा किसान नाराज है किसान आंदोलन, क्या फर्क पड़ा, आपने कहा जाट नाराज है जाट आंदोलन, क्या फर्क पड़ा, आपने श्रीकांत त्यागी के बाद कहा त्यागी नाराज है त्यागी आंदोलन, क्या फर्क पड़ा, 2022-2019 दोनों देख लीजिए, आपने कहा विकास दुबे के बाद ब्राह्मण नाराज है, क्या फर्क पड़ा, 91% वोट, अब आप कह रहे हैं राजपूत नाराज है। राजपूतों को आप देखे वेस्टर्न यूपी में जब से ये चला है, आप सेंट्रल अवध, सेंट्रल यूपी, बुंदेलखंड, ईस्टर्न यूपी। आप देखिए मेरे पास जब मैंने लिस्ट तैयार की, मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर, फिरोजाबाद से विश्वदीप सिंह ठाकुर, एटा से भी एक ठाकुर कैंडिडेट, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अकबरपुर कानपुर से देवेंद्र सिंह भोले, हमीदपुर से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, फैजाबाद से लल्लू सिंह, गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, बलिया से नीरज शेखर, चंद्रशेखर के बेटे, और जौनपुर से कृपा शंकर सिंह। तो ऐसा नहीं, इतने ढेर सारे छतरी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं कि आप उस डैमेज को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन फिर भी ब्रिजभूषण का एक अपना, ब्रिजभूषण के बड़े लड़के भाजपा से विधायक हैं, ब्रिजभूषण खुद सांसद हैं, तो इन्होंने करण भूषण को देकर, अभी तक हालांकि इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है लेकिन माना जा रहा है। अब एक फाइनली उस सीट की बात आती है, अमेठी और रायबरेली, विल दे विल दे नॉट, कैश 22। जो डरो मत वाला नारा देने वाले अभी तक डर रहे हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा देने वाले 2022 से, ऐसे लड़की हूं भाग सकती हूं उन्होंने दिखाया कि पलट के, उन्होंने दो साल में उत्तर प्रदेश का रुख ही नहीं किया। 2022 से, 2022 उत्तर प्रदेश में चुनाव से प्रियंका गांधी ने जो उत्तर प्रदेश छोड़ा तो फिर सीधे सहारनपुर में प्रकट हुई इमरान मसूद के साथ, ये भी देखिए आप, बोटी बोटी इमरान मसूद के साथ सीधे प्रकट हुई, वरना वो दो साल प्रकट ही नहीं। कारण प्रियंका गांधी को माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में करिश्मा करेंगे, और 77 साल के इतिहास में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, देखिए साहब बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं, कोई और होता तो इसमें बड़ी बहस होती, प्रियंका इसलिए इसमें मीडिया बहस नहीं करती, 77 साल के इतिहास में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने गृह प्रदेश में मिनिमम प्रदर्शन किया 2% वोट, 2% वोट। अब वो दो देखिए, और वो 2% वोट भी उस, वो 2% वोट में भी 1% प्रमोद तिवारी के रामपुर खास से आ जाता है। जो प्रमोद तिवारी 1980 के बाद हारा ही नहीं, 1980 से हारा ही नहीं।
उम्मीद होगी ना कि जैसे वो बेचारा क्या है, 5 बार का हारा वीरेंद्र बेचारा करते हुए एक सीट मिल गई फरीदा की, उसी तरह से कोई और सीट मिल जाए।
तो वही तो कह रहा हूँ, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ भाग सकती हूँ उन्होंने दिखा दिया। राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, अमेठी से हारने के बाद वो अमेठी में प्रकट नहीं हुए। मैं तो हालांकि ये उनके ऊपर इल्जाम साहब मैं गलत मैं मानता हूँ, वो अमेठी से जीतने के बाद भी अमेठी नहीं जाते थे, इसलिए उनको ये कहना कि हारने के बाद फरार हैं ये गलत है, वो जीतने के बाद भी नहीं जाते थे।
देखिए उनका संभाव है, वो वायनाड भी नहीं गए,
संभाव है, संभाव है वो। अच्छा देखिए कारण है, उसका भी कारण है बड़ा, देखिए सर लॉजिस्टिकल दावा बिना दलील के नहीं होता है। अगर आरटीआई हमको साहब ये बताती है कि राहुल गांधी देश में साल में 65 बार विदेश जाते हैं, यानी महीने में 5 बार से ज्यादा, तो आप सोचे उसके बाद 15% उनकी पार्लियामेंट अटेंडेंस भी है, तो आखिर बंदे के पास समय कहां बचा? 15% पार्लियामेंट भी जाना है, 100 में 15% पार्लियामेंट भी जाना है, हर महीने में 5 बार विदेश भी जाना है, तो उसके बाद उनके पास अमेठी या वायनाड के लिए समय कहां बचता है? दिक्कत उनके साथ क्या आ रही है?
उनके लिए एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी थाईलैंड या बर्मा या ऐसी जगहों पे क्रिएट होनी चाहिए, वहां वो निश्चित रूप से जीतेंगे।
नहीं सर वो भी नहीं हो पाएगा, किसी एक जगह नहीं जाते हैं, ही इज एमपी एट लार्ज, वो कहीं नहीं जाए उनका कुछ, और वो तो साहब सिक्योरिटी भी छोड़ जाते हैं, वो तो बताते भी नहीं कहाँ जा रहे हैं, वो तो कहते हैं हम सिक्योरिटी भी नहीं, वो सिक्योरिटी जिसके लिए मारामारी होती है भारत में, बाहर जाते हैं सिक्योरिटी छोड़ देते हैं वो, बिकॉज ही डजंट वांट टू बी फॉलोड।
उनके नहीं है, लेकिन सरकार को तो सब पता रहता है कहाँ जा रहे हैं, वो बताती नहीं है, सरकार भी नहीं बताती है हमको कि कहाँ जा रहे हैं। देखिए वो भी बचा के रखते
हैं, सरकार को, सरकार को नहीं पता होता तो अटल बिहारी छुड़ाते कैसे उनको एयरपोर्ट पे, आप भूल गए, आपको घटना भूल गए तो अटल बिहारी छुड़ाते कैसे उनको।
तो अब
अमेठी रायबरेली का सर
है, पहले हम वैसे तो पहले दो राउंड डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमारा निष्कर्ष लगभग यही आया था कि भाई अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है इक्की दुक्की छोड़ के। अब जो है कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर MY जो है वो मैटर कर रहा है, जैसे संभल और फिरोजाबाद जो अगले राउंड में जो सीटें जानी है, प्लस मैनपुरी चौथे राउंड में, फिर कन्नौज आ जाएगी, और उसके बाद फिर पांचवें राउंड में आपके पास रायबरेली अमेठी आ जाएगी। तो जरा अब जो सीट वाइज है थोड़ा सा वो भी आलोकित करें,
बताएं सर पहली सीट बताएं,
संभल बताइए।
संभल संभल का भाई वहां पे एक स्वीकृति वोट है, शिफकुर रहमान बर साहब के यहाँ निधन हुआ है और उनके नाती लड़ रहे हैं वहां से जियाउर रहमान। लेकिन संभल में क्या होगा उससे ज्यादा मजेदार ये है कि संभल से देश का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। संभल से अखिलेश यादव की उपस्थित में मन से डिक्लेयर किया जा रहा है कि हमको शहीदों के नाम पे वोट चाहिए और शहीदों के नाम गिनाए जा रहे हैं अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मोहम्मद शहाबुद्दीन। मतलब आप हाँ अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी, चंद्रशेखर आजाद और बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान थे। तो अब मुझे लगता है मुख्तार अंसारी के लूटपाट को काकोरी कांड घोषित किया जाना चाहिए कि साहब अगर वो क्रांतिकारी थे तो उनकी जो लूट और एक्सटॉर्शन के किस्से हैं उन्हें ऑफिशियली काकोरी कांड मान लेना चाहिए कि भाई वो एकदम क्रांतिकारी हो गए। आपने देखा अखिलेश यादव की उपस्थित में वहां से नारे इस तरह के आ रहे हैं, जियाउर रहमान वहां से इस तरह की बातें कर रहे हैं, जियाउर रहमान अलग कर रहे हैं, अखिलेश यादव की उपस्थित से अलग हो रही है, शाह ये अफजाल अंसारी अलग कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह का माहौल बना रहे हैं। उसके बाद कहेंगे भाजपा ध्रुवीकरण
करती है, वोट वोट जिहाद का भी आह्वान हो गया है।
वोट जिहाद का आपके अच्छा फरुखाबाद में लोग कहते हैं अरे वो कौन थी जिन्होंने कह दिया, अरे कौन थी नहीं भाई, उनके मामू जान वहीं बैठे थे, उनके मामू जान वहीं बैठे हुए थे, क्या नाम है इनका, सलमान खुर्शीद, सलमान खुर्शीद साहब वहीं बैठे थे, उन्होंने उनको कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं किया, उन्होंने उनको कॉन्ट्रेडिक्ट, सलमान खुर्शीद वो शख्स है जिन्होंने ये हिंदू आतंकवाद जो टर्म गढ़ा था, सलमान खुर्शीद वो शख्स हैं जिन्होंने ये जबरदस्त सूचना दी थी कि बाटला हाउस एनकाउंटर सुन के सोनिया गांधी रोने लगी। सलमान खुर्शीद की पहले भी एक, सलमान खुर्शीद ने तो पूरी किताब लिख मारी है हिंदू आतंकवाद पे, ना देखें आप साहब, तो वो तो वहां बैठे हुए थे उन्होंने। तो आप दिल्ली में आप देख ले पोस्टर्स छप रहे कि अगर यासीन मलिक को छुड़ाना है तो कांग्रेस को वोट करो, आप देखा पोस्टर्स वहां पे बाकायदा लगे। मुझे ये साफ समझ में नहीं आता दिल्ली पुलिस ने उन्हें हटाया क्यों, अगर वहां ये पोस्टर्स लगे हैं मनमोहन सिंह के और यासीन मलिक के हाथ मिलाते हुए और ये उस पोस्टर्स पे लिखा कि यासीन मलिक को छुड़ाना है तो कांग्रेस को वोट करो, तो दिल्ली पुलिस हटा क्यों रही है भाई, लगा रहे देना लोगों को भी तो पता चला कांग्रेस को वोट क्यों करो। मुझे नहीं लगता उन पोस्टर्स को हटाया जाना चाहिए, तो लेकिन ठीक है वो दिल्ली पुलिस हटा रही। संभल में एक सिंपैथी वेव है, देखिए मेरा अपना मानना है कि कोई भी वोट कोई भी पोलराइजेशन मैं उसको उतना ज्यादा नहीं समझ में पाता हूँ जब वहां एक सिंपैथी वेव चलने लगती है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि जिस सीट को मुलायम सिंह ने मात्र 90,000 सीट से जीता था, मैनपुरी की बात कर रहा हूँ, उसी को डिम्पल ने करीब 3,00,000 वोटों से जीता क्योंकि सिंपैथी वोट, यानी मुलायम सिंह को जो वोट नहीं मिला वो मुलायम सिंह के लिए मिला। तो जहां सिंपैथी वोट वेव चलती है वहां पे कुछ भी कहना मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल होता है, फिर लोग जज्बाती हो जाते हैं, अब उन जज्बातों में लोग कहाँ जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं कहना मुश्किल है। मैनपुरी में डेफिनेटली मैं आपके चैनल पे ऑफिशियली कह रहा हूँ कि मैनपुरी में मैं नहीं कह रहा हूँ डिंपल यादव हार जाएंगी, मैनपुरी इकलौता किला है जिसको भारतीय जनता पार्टी अब तक भेद नहीं पाई है। आपने रामपुर जीत लिया, आपने एटा जीत लिया, आपने कन्नौज जीत लिया, आपने आजमगढ़ जीत लिया, आपने बदायूं जीत लिया, लेकिन आप मैनपुरी अब तक भेद नहीं पाए। लेकिन जब हम मैनपुरी से एक ऐसे आदमी को टिकट देते हैं जो मैनपुरी खास से वहां पे विधायक है, और विधायक ही नहीं मतलब उसने राजकुमार यादव की हैट्रिक होने से तोड़ी, वो आदमी वहां से जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रहा है, बसपा ने भी वहां एक ऐसा कैंडिडेट दे दिया है यादव, कहीं ना कहीं वो भी यादव वोट बैंक में जिसे कहना चाहिए सेंध लगा रहा है। तो आप मान के चले कि डिंपल यादव का चुनाव पिछली बार सिंपैथी में एक चुनाव लड़ा जाता है ना, एक से ज्यादा सिंपैथी वोट नहीं होता है, तो डिंपल यादव डेफिनेटली यहाँ पे एक थोड़ा सा परेशान नजर आ रही है। इसका देखिए सबूत भी दे रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ दावा बिना दलील के लिए, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव अपनी सीट छोड़ के डिंपल का प्रचार कर रहे हैं। आप सोचिए मतलब बंदे की अपनी सीट दांव पे लगी है, आजमगढ़ पे मुस्लिम कैंडिडेट दे रखा है, और मुस्लिम कैंडिडेट भी कैसा दिया मायावती ने, जो कांग्रेस का वहां जिला अध्यक्ष है उसको उतार दिया। तो एक आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को उन्होंने बसपा से उतार दिया, लेकिन बंदा अपनी सीट फंसी छोड़ के मैनपुरी में लगा हुआ है। डिंपल लगी हैं, अखिलेश लगे हैं, डिंपल की लड़कियां लगी हैं, डिंपल की बहन लग गई, इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि मुलायम सिंह के परिवारवाद को ससुराल तक पहुंचाने का श्रेय जाता है अखिलेश यादव को जिन्होंने अपनी साली को बुला लिया। मुलायम सिंह अब तक बात को सिर्फ परिवार में रखते थे, अखिलेश ने उसको ससुराल भी जोड़ लिया है, अब उनकी साली भी चुनाव प्रचार
कह रहे होंगे ना कि साहब मेरी ससुराल तो राजपूतों।
हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ ना, उन्होंने परिवारवाद से उठकर ससुरालवाद तक चले गए हैं। और बड़ी बात है, बिटिया उनकी वहां पे, आप सोचिए छोटी सी लड़की जो शायद अभी बालिग नहीं है, जो वोट नहीं दे सकती, 50-50, 60-60 साल, 70-70 साल के लोग, उसके बाप उसके दादा की उम्र के लोग उसके सर पे पगड़ी रख के उसको यादव स्वाभिमान, यादव समाज और पता नहीं किसका किसका नेता डिक्लेयर कर रहे हैं। साहब ये लोकतंत्र उसमें नहीं हो सकता कुछ भी हो। कन्नौज में खुद अखिलेश यादव को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कन्नौज की सीट आपने देखा है हर बार फंस जाती है, डिंपल वहां से हार चुकी है। अच्छा मैं
एक मिनट आपको जो कन्नौज की जो स्थिति है थोड़ा सा आपसे डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि कन्नौज में सुब्रत पाठक 12,000 से जीते थे, और वो जो 12,000 से जीते थे तो उसमें जो आपकी ये सीट एक थी जिसमें से 17,000 की उन्होंने लीड ली थी, जो रसूलपुर है, उसके कारण जीते थे, क्योंकि बाकी सीटों पर लगभग वो बराबर बराबर से स्थिति थी, कोई 1,000 ज्यादा कोई 500 कम इस तरह से। और ये रसूलपुर शायद कानपुर देहात में पड़ता है। अच्छा दूसरा फैक्टर ये है कि पिछली बार बसपा साथ में थी, तब भी सुब्रत पाठक 12,000 से जीत गए थे और डिंपल से जीते थे।
वही बात जो मैं कह रहा हूँ।
तो डिंपल भी जो है वो अखिलेश यादव के आने से वो वाला फैक्टर कोई बहुत बदल गया हो ऐसी तो मुझे नहीं लगती, तो आप बताएं।
देखिए आप कन्नौज देख लें, बदायूं देख लें, संभल देख लें, आजमगढ़ जीत लें, मैनपुरी जीत देख लें, ये सारी सीटें बनी कैसे, एटा इस समाजवादी का गढ़ कहलाती
एटा तो नहीं कहेंगे, फिरोजाबाद देख लें, फिरोजाबाद
एटा भी पहले एक जमाने से पता नहीं क्यों वहां यादव पॉपुलेशन बहुत कम है, उसके बाद भी वो क्यों सपा की गढ़ कहलाती है, मैं समझ नहीं। बहरहाल आप तमाम सीटों पे जाएं तो आपको नजर आता है कि सीटें सपा की गढ़ बनी कैसे। मुलायम सिंह आते थे वहां से चुनाव लड़ते थे, जब जीत जाते थे तो उसको अपने एक पारिवारिक मेंबर को दे देते थे, जसवंत अगर शिवपाल को दे दिया तो आजमगढ़ के किसी को दे, अखिलेश को दे दिया, बदायूं धर्मेंद्र को दे दिया, कन्नौज दे दिया अखिलेश को, ऐसे करके वहां पे जाते थे, सीट बनाते थे, सीट जिसे बनाना कहते हैं उसको पार्टी के नाम पे बनाते थे, परिवार के नाम पे बनाते थे, फिर परिवार के एक मेंबर को अपना बेटा भेज रहा हूँ जिता देना, कन्नौज से आपको अभी तक मुझे याद है उनका पहला डायलॉग, बेटा भेजा है जिता देना, बेटा जीत भी गया। बहरहाल कन्नौज में भी ब्राह्मण पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, और इस बार जो इन्होंने वहां से एक मायावती भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया है उन्होंने, हालांकि उसका बहुत ज्यादा असर मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन इसमें दो राय नहीं। अच्छा अखिलेश के आने से एक बात है वो ये, थोड़ा जोश आता है लोगों में, थोड़ा जोश आता है, और बहुत आपको याद होगा जब डिंपल वहां से निर्विरोध जीती थी तो मेरे पास फोटोज है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं, आप दिखा सकते हैं, कन्नौज के कन्नौज के चारों तरफ एक घेरा डाल दिया गया था और एक एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी कि भाजपा उम्मीदवार पहुंच तो नहीं रहा, तो आपने वहां उम्मीदवार नहीं पहुंचने दिया। और उसके बाद जब सूरत पे अखिलेश यादव कमेंट करते हैं तो मुझे हंसी आती है, अरे भाई सूरत तो भारतीय जनता पार्टी दो बार से 74% 75% वोट से निकाल रही थी, वो तो उनका निकलना ही निकलना था भाई, कन्नौज की सोचो जहां आपने आपने ऐसा खेल किया। बहरहाल मैं मान के चलता हूँ कि कन्नौज से अखिलेश यादव ने साहब इस बार दो एक्सपेरिमेंट किए, पहला
एक ये भी है, अखिलेश यादव क्यों कूदे लास्ट मोमेंट पे कन्नौज में,
मेरा साहब जेन्युइनली मानना है कि अखिलेश यादव को वहां दिक्कत आई, इस तरह दिक्कत आई कि आप वहां पे जो पहले नाम उनका डिक्लेयर हुआ था, क्या नाम है उनका,
तेज प्रताप,
जो तेज प्रताप का तेजू, वो लालू यादव के छोटे दामाद हैं, 2019 में भी वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, बहुत बवाल हुआ, राजू लालू यादव का बहुत प्रेशर आया लेकिन नहीं हो पाया। इस बार उन्होंने तेज प्रताप ने खुल के कहा कि अगर शिवपाल का लड़का लड़ रहा है, राम गोपाल का लड़ रहा है, राम धर्मेंद्र लड़ रहे हैं, भाभी लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं, मैं व्हाट इज रॉन्ग विद मी, तो साहब उनको भेजा गया। लेकिन उनके कैंडिडेचर के एक घंटे के अंदर आप माने कि पूरी कन्नौज यूनिट कम से कम 50-60 गाड़ियों में भर के अखिलेश यादव के घर पहुंच गई, कहा साहब तेज प्रताप को तो नहीं लड़ने देंगे, कारण यह है कि हम यहाँ पे मन बना चुके थे कि आप आ रहे। अच्छा मन कैसे बना, चुनाव की घोषणा होते ही डिंपल वहां जाके प्रचार करने लगी, अपनी लड़की अदिति को लेकर प्रचार करने लगी, तो एक वहां माहौल बन गया कि भैया आ रहे भैया आ रहे हैं, तो अब एक बार आदमी का मन बन गया कि साहब यहाँ से नरेंद्र मोदी लड़ने जा रहे हैं, और फिर आप नरेंद्र मोदी को ना भेजकर वहां पे आप किसी को भेज दे, साध्वी प्राची को भेज दे, उसमें नहीं बनेगी बात ना, तो वो एक माइंड सेट बन गया। तो इतना जबरदस्त विरोध हुआ, इतना ज्यादा विरोध हुआ कि फिर अच्छा एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, अखिलेश यादव ने इस बार दो एक्सपेरिमेंट किए, एक मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिया, दूसरा उन्होंने परिवार के बाहर एक भी यादव को टिकट नहीं दिया। पांच यादवों को टिकट मिले हैं, पांच यादवों को टिकट मिले हैं, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल का लड़का, राम गोपाल का लड़का और इनका भाई धर्मेंद्र यादव। सिपाही के बाहर टिकट गया ही नहीं परिवार के बाहर, ये कमाल हो गया साहब। अब तब आपने कितना खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया है। सीएसडीएस का डेटा कहता है कि 2014 और 2019 में चार में से एक यादवों ने लोकसभा में मोदी को वोट दिया है, या मोहन यादव आके गली गली प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में आप परिवार के बाहर किसी को भी यादव मानने से मना कर देते हैं। तेजस्वी यादव को देख ले, पुणिया में जाकर कह रहे पप्पू यादव को जिताने से अच्छा भाजपा को जिता दो, एनडीए जिता दो। तो लालू यादव को मानना है कि उनके परिवार के बाहर कोई यादव नहीं है, फिर वो पप्पू यादव ही क्यों ना हो। अखिलेश यादव का मानना है कि सिपाही परिवार के बाहर कोई यादव नहीं है। तो ये इन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया है, देखना होगा कि इसका क्या असर आएगा। कन्नौज, मैनपुरी के अलावा बाकी जगह आप
फिरोजाबाद की भी बात कर ले थोड़ी।
फिरोजाबाद पे आ रहा हूं सर, एक चीज बता दूं, मैनपुरी में जो सबसे बड़ी लीड जो दे रहे थे जसवंत नगर से शिवपाल यादव दे रहे थे। शिवपाल यादव, आप मैं बड़े दावे से कह रहा हूं साहब, पूरा गूगल कर डालिए देख लीजिए, शिवपाल को चाचा वो सिर्फ मैन जसवंत नगर में कहते हैं अखिलेश, वरना कहीं उनके जबान पे शिवपाल या चाचा वर्ड ही नहीं आता। वो फिर से चाचा की बात कर रहे हैं जब, क्योंकि जसवंत नगर में सभा हो रही है, उन्हें मालूम है जसवंत नगर में डिंपल यादव को शिवपाल यादव की जरूरत है, वहां पे उनकी शिवपाल की पकड़ है। बाकी जगह वो शिवपाल से इतना डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं कि शिवपाल यादव को अपने लड़के को टिकट दिलाने के लिए जिला यूनिट से प्रस्ताव पारित करा के भेजना पड़ता है। बाकी जगह वो शिवपाल यादव के फोन तक नहीं देते। जब वो जसवंत नगर पहुंचते हैं, चाचा जिंदाबाद, चाचा जिंदाबाद। और इसी में शिवपाल यादव कहीं ना कहीं इतना डिस्टर्ब हुए कि जसवंत नगर में कल उन्होंने भाजपा को भारी बहुमत जिताने की अपील कर डाली। आपने देखा होगा वो वीडियो।
यह एक्सीडेंटल है अधीर रंजन की तरह या क्या?
या कह लीजिए फ्राइडियन स्लिप है सर। मतलब आप इसको मतलब कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब तो इतने हैं। अधीर रंजन ने तो जानबूझकर कहा, तेजस्वी यादव ने जानबूझकर कहा और बड़े दावे से कहा, बड़ा क्लियरली कहा। शिवपाल यादव मुझे लगता है इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि उनके मुंह से निकल गया। जहां तक आते हैं फिरोजाबाद की सीट, तो मैं साहब बहुत ईमानदारी से मानता हूं कि फिरोजाबाद की सीट भारतीय जनता पार्टी ने राम गोपाल यादव को पुरस्कार स्वरूप दी। वहां पे जिस तरह का कैंडिडेट आया है वो लिटरली वॉकओवर कहलाता है, और कितना होगा कितना नहीं होगा तो समय बताएगा, लेकिन पहले दिन से इस बात की पुख्ता सूचना थी कि राम गोपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, साहब मेरा लड़का जिता दो, मेरा लड़का जिता दो और बाकी पूरी पार्टी को जहां कहो मैं वहां दिया सलाई लगा दू। तो इसीलिए सोशल, मैंने इसको साहब ट्वीट भी किया था कि समाजवादी पार्टी में जब टिकट बदले जा रहे थे तेजी से, तो मैंने ट्वीट किया था कि सपा में केवल एक टिकट तय है पक्का, फिरोजाबाद का, बाकी डिंपल का भी कर सकता, अखिलेश का भी कर सकता। तो मतलब एक एक टिकट केवल राम गोपाल के लड़के का तय था, और मुझे लगता है कि किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत वहां पे एक बहुत ही कमजोर कैंडिडेट लाया गया है। मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता उस कैंडिडेट से, वहां डेफिनेटली राम गोपाल यादव का लड़का अभी तक अपना सबसे विश्वस्त चुनाव, सबसे ताकतवर चुनाव लड़ रहा है। लेकिन फिर कहता हूं कि फैसला तो अंतिम जनता ही करती है।
लेकिन ये भी पूरी संभावना है ना, जिस तरह से पिछली बार हुआ, वैसे पिछली बार तो जो है वो
पिछली बार साहब 90,000 वोट शिवपाल यादव ने काटे, 91,000।
हाँ, तो शिवपाल यादव ने वहां पे लगाई थी तीली, क्या शिवपाल यादव इस बार छोड़ देंगे?
सर पिछली बार तीली लगाने के लिए शिवपाल यादव को खड़ा होना पड़ा था चुनाव में। कोई भी शिवपाल यादव अपने भतीजे के खिलाफ खड़े नहीं होना चाहते थे, लेकिन शिवपाल यादव, मैं हमेशा कहता हूं कि काना फूसी करके चुनाव नहीं हराया जा सकता। जब आप कोई एक इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि आप अपने ही भतीजे को हराने जा रहे हैं, तो फिर आपको डंके की चोट पे हराना पड़ेगा धीरे। वो साहब यहाँ पे पूर्वांचल में कहावत है कि ऊंट की चोरी न्यूरे न्यूरे नहीं होती। जब आप ऊंट चुराने जाते हैं तो झुक झुक के नहीं जाते हैं, फिर आप दमंगे ही से जाते हैं। तो जब आप राम गोपाल यादव के लड़के को हराने निकले हैं, तो फिर आपको खुद खड़ा होना पड़ा। अगर शिवपाल यादव को लगता कि उनके खड़े हुए बगैर राम गोपाल का लड़का हार जाएगा तो शिवपाल खुद ही खड़े होते साहब, क्योंकि उन्हें मालूम था मैं भी खड़ा होऊंगा तो वोट कटवा ही कहलाऊंगा और चुनाव हारूंगा, और हारे भी हूं।
तो जो पिछली बार जो इन्होंने कैंडिडेट दिया था चंद्रसेन जादौन, तो उसको क्यों चेंज किया? वैसे तो केवल 28,000 से जीते थे, ये बहुत अधिक मार्जिन नहीं था।
अच्छा साहब, अगर इतनी अच्छी फाइट जादौन ने दी, उसके बाद आप उनको बदल के एक गुमनाम सा कैंडिडेट ला रहे हैं जिसकी कोई इलेक्टोरल हिस्ट्री नहीं है, तो मैं कह तो रहा हूँ ना कि पुरस्कार स्वरूप दिया है उनको, अपने पूरे पार्टी में दिया सलाई लगाने का पुरस्कार है उनको। मैं बार बार कहता हूँ सर, एक बात मुझे और कह लेनी थी, मैं बार बार कहता हूँ अखिलेश यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता भाजपा 80 में 80 सीट जीत जाए, इनफैक्ट उन्हें फायदा होता है। उनकी सारी प्राथमिकता इस बात की कि बसपा ना खड़ी होने पाए। 2022 में जिस तरह उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ एक विधायक में धकेल दिया, उनकी सारी प्राथमिकता यह है कि 2027 तक यही स्थिति कायम रहे और विपक्ष के नाम पे सिर्फ समाजवादी पार्टी हो, ना कांग्रेस हो, ना बीएसपी हो। मैंने हमेशा माना कि जितनी क्षेत्रीय पार्टी है, डीएमके से लेके लालू यादव तक और ममता बनर्जी से लेके अखिलेश यादव तक, इनका केंद्रीय चुनाव से कुछ लेना, इनको 2-4 सांसद चाहिए होते हैं जो संसद में हल्ला मचा सके। बाकी इनकी प्राइम, इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी राज्य में सरकार बनाना, मुख्यमंत्री बनना और उसके बाद अपने हिसाब से अनाप शनाप सरकार चलाना। इसलिए उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि साहब कोई तरह बसपा ना खड़ी होने पाए 2027 तक, शायद उनको मौका लग जाए। दूसरी बात, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो अखिलेश यादव, लालू यादव, ममता, इन लोगों को फायदा ही होता है ना साहब, उन्हीं का टिकट, उन्हीं का डर दिखा के तो ये मुसलमानों को फिर से अपने घेरे में लेते।
जी, तो चलिए अब चलते हैं हम पीस द रेजिस्टेंस, पूरे उत्तर प्रदेश का जो सबसे आनंददायक चुनाव होगा वो संभवतः अमेठी और रायबरेली में होगा। अब एक सिनारियो ले लेते हैं कि अमेठी में लड़ेंगे राहुल गांधी। पिछली बार राहुल गांधी जो थे तिलोई में 15,000 वोट से पीछे थे, जगदीशपुर में 17,000 से और गौरीगंज में 20,000 से। अमेठी में उन्होंने 240 या 230 वोट की लीड ली थी और सलोन में वो लगभग 2,000 वोट से पीछे थे। तो पिछली बार ही वो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी तो हार चुके, और जो मेरी रिपोर्ट है कि इस बार स्मृति ईरानी ने अमेठी पे बहुत मेहनत की है और महाराजी प्रजापति आ गई हैं, उधर आपके जो राकेश प्रताप सिंह हैं वो भी आ गए हैं, तो यदि राहुल गांधी लड़ते भी हैं क्या स्थिति बनेगी?
देखिए सर, अगर विधायकों के लिहाज से जैसे आप कह रहे हैं तो आप देखिए, तिलोई से मैंकेश्वर सिंह, सलोन से अशोक कोरी, जगदीशपुर से सुरेश पासी, गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह और एक लेदे के बाहर थी महाराजी, तो अब महाराजी जो उनकी गायत्री की पत्नी है वो भी पलट गई है, तो यानी 5 की 5 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। राहुल गांधी हार चुके हैं 50,000 वोट से, पलट के वो वहां पे गए नहीं, एक भी बात उनके फेवर में नहीं सिवा एक के, सिर्फ एक बात उनके फेवर में जाती है कि साहब गांधी परिवार का नाम है और गांधी परिवार की सीट है। ये वो सीट है जिससे संजय गांधी हारे हैं, जिससे खड़ाऊ पॉलिटिशियन सतीश शर्मा हारे हैं, जिससे राहुल गांधी हारे हैं। इसके मुकाबले वहीं आप रायबरेली जाए तो इट इज अ मच मोर सेफर सीट। आज भी वहां 5 में से 3 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है, बल्कि था तो 4 सही पूछे तो, लेकिन रायबरेली से क्या अदिति सिंह अकेली थी? अदिति सिंह वो अखिलेश सिंह की डॉटर है, अखिलेश सिंह वहां से 5 बार विधायक रहे।
मनोज पांडे
क्रॉस ओवर कर गए हैं ऊंचा हार से, तो अब ये 3-2 का एक हो गया। दूसरी बात, मनोज पांडे वहां पे एक इतने पॉपुलर, मैंने व्यक्तिगत रूप से जानता हूं साहब, इतने पॉपुलर हैं कि वो मोदी वेव में भी अपनी सीट बचाए रखते हैं, लगातार उन्होंने अपनी सीट बचाए रखी, वो हारे ही तो उन्होंने तो स्वामी प्रसाद मौर्य को हरा के वहां से दाखिल दफ्तर कर दिया, तो उनके लड़के को हरा दिया। तो मेरा मानना है अपना कि वहां अच्छा, रायबरेली एक ऐसी सीट है साहब जो आजादी से लेके आज तक एक बार भी कांग्रेस नहीं हारी, नॉट इवन वंस। तो पहली 2 बार तो साहब वहां फिरोज गांधी ही वहां से सांसद रहे हैं, हालांकि जब ये फिरोज गांधी के नाम पे चिट्ठी लिखती हैं सोनिया गांधी तो मुझे हंसी थोड़ी इसलिए आती कि प्रयागराज में जहां साहब मैं बैठा हूं, यहां से 1 किलोमीटर दूर फिरोज गांधी की कब्र है जिसपे आज तक ना राहुल आए, ना प्रियंका आए, ना सोनिया आई, इंदिरा जी एक बार बहुत पहले आए थे, राजीव गांधी एक बार भी नहीं आए, संजय गांधी एक बार भी नहीं आए। ऑन द कॉन्ट्ररी, कभी कभी उस पर कोई आता है तो मेनका गांधी आती है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर उनकी कब्र है, एक पारसियों का कब्रिस्तान है। तो लेकिन फिरोज गांधी के नाम पे बात हो रही है। चल हमने कहा चलिए इसी बहाने पहली बार कांग्रेस ने फिरोज गांधी का तो नाम लिया, क्या साहब मेरी ससुराल है वगैरह वगैरह, लेकिन वो सीट अभी भी इनके सुरक्षित। देखिए साहब तीन सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो अमेठी से राहुल गांधी लड़ जाए और प्रियंका लड़ जाए रायबरेली से। इसमें भी दो तीन सिनेरियो बनते हैं। फर्ज कीजिए प्रियंका जीत गई और अमेठी जैसा कि रिस्की है राहुल हार गए, तो फिर स्थिति क्या बनेगी आप समझिए।
परिवार का झगड़ा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें।
परिवार का झगड़ा सब बाहर नहीं आता ना, लेकिन बड़ा मजे आपको बता रहा हूँ, मैं तो उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ भाई बहन लड़े ना लड़े, लेकिन एक टीम प्रियंका और एक टीम राहुल, इतना जबरदस्त झगड़ा चल रहा है कि खासतौर से जब से अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हुए हैं, प्रियंका गांधी ने तो बात ही करनी बंद कर दी। अखिलेश यादव जमाने से कह रहे हैं कि साहब हम डिंपल यानी अखिलेश डिंपल राहुल और प्रियंका मिलकर एक रोड शो कर ले, लेकिन प्रियंका तैयार नहीं होती। प्रियंका जिस रोड शो में जाती है इमरान मसूद के, उसमें राहुल और अखिलेश नहीं आते। आप देखें इसको, राहुल और अखिलेश जो अमरोहा में जाते हैं वहां प्रियंका नहीं आती। देखिए साहब सामने साफ नजर आ रहा है, इसमें कहीं कोई लुकी छिपी बात नहीं है। ऐसे में अगर प्रियंका जीत गई और राहुल हार गए तो सोनिया गांधी की एक ही ख्वाहिश बची है कि भाई बेटे को बाप की विरासत मिल जाए, वो गड़बड़ा जाती है। दूसरी आप सोचे, फर्ज करें राहुल और प्रियंका दोनों जीत जाते हैं, राहुल अमेठी से जीत जाते हैं, प्रियंका रायबरेली से जीत जाती हैं, ऐसे में प्रियंका एक चुनौती के रूप में तो उनको पहले पैदा ही हो गई ना। राहुल 50 से ज्यादा चुनाव हार के बैठे हैं। राहुल गांधी से जब भी कोई सवाल किया जाता था वो कहते साहब मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछे, मेरे मैं तो अध्यक्ष हुए हैं। लेकिन जब राहुल गांधी से यह सवाल किया गया कि साहब वरुण गांधी कांग्रेस में आने की बात कर, नहीं नहीं वरुण गांधी को नहीं ले सकते कांग्रेस, उन्होंने वही फैसला सुना दिया। क्यों? 50 चुनाव हार के आप बैठे हो, सामने एक और गांधी आ जाएगा, राजीव गांधी के लड़के के मुकाबले संजय गांधी के लड़का आ जाएगा, अनदर गांधी, वो भी जीता हुआ सांसद, तो आपको तो दिक्कत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर वो भी इनके लिए स्थितियां खराब है। तीसरी स्थिति ये बनती है दोनों भाई बहन हार जाए, वो स्थिति तो खराब हो ही जाएगी। एक आखिरी बात मैं इसमें ये जोड़ना जरूर चाहूंगा, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में
अच्छा, राहुल गांधी रायबरेली चले जाए तो
वो एक उस पे भी आ जाते हैं। एक बहुत ज्यादा ये बात कही जा रही कि राहुल गांधी अमेठी की जगह रायबरेली से लड़ जाए और प्रियंका गांधी जाके अमेठी लड़ जाए, ये भी दो पॉसिबिलिटी है। पहली ये कि राहुल रायबरेली से अमेठी से प्रियंका, दूसरी ये कि राहुल रायबरेली से और अमेठी में कोई खड़ा हो पॉलिटिशियन भेज दिया जाए, प्रियंका को ना भेजा जाए। प्रियंका अगर आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ पा रही तो इसका सिंपल कारण ये है कि सोनिया गांधी को इसका डर है कि साहब प्रियंका गांधी एटलीस्ट संवाद बेहतर करती है, राहुल गांधी बोल नहीं पाते, वो उनपे लीड ले लेंगी परिवार के अंदर और पार्टी उनकी तरफ जुड़ जाएगी। बहरहाल फर्ज करें कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, प्रियंका गांधी वहां जाती है, उनको माना जा रहा है कि साहब महिला है, स्मृति ईरानी को बेहतर टक्कर दे देगी। पहली बात मुझे लगता नहीं। दूसरी बात, राहुल गांधी अगर रायबरेली से लड़ते हैं तो उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि पड़ोस वाली सीट छोड़ के जो वहां से तुम जिंदगी भर लड़ते रहे, वहां से तुम भाग के यहां से क्यों लड़ रहे हो, और इस बात का जवाब उनको रायबरेली में भी देना पड़ेगा और इस बात का जवाब उनको अमेठी में भी देना पड़ेगा कि साहब भाई ये तो मतलब इलाहाबाद में मतलब दो सीटें हैं फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र, अब तुम एक क्षेत्र से भाग के फूलपुर चले, फूलपुर से भाग के, तो एक जवाब देना पड़ता है। सर क्यों भागे आप वायनाड भाग गए, वहां से कोई आपसे इतनी दूर जाके जवाब नहीं मांगेगा ना, कोई केरल जाके आपसे जवाब नहीं मांग रहा है, लेकिन वही चुनाव प्रचार करोगे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा इस बात का। एक आखिरी बात साहब, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय पार्टी को एक दिक्कत आ रही है उत्तर प्रदेश में कि अग्रेसिव जो आपका एक निशाने पे किसी को लेने वाला होना चाहिए, आपको निशाना नहीं मिल रहा है। कारण 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, 7 साल से राज्य में आपकी सरकार है, अखिलेश यादव को आप क्या निशाने पे लेंगे, बंदा 7 साल पहले हार के बाहर हो गया, मायावती को आप क्या निशाने पे लेंगे, 12 साल से हार के बाहर है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी क्या निशाना है, पूरा परिवार फरार है उत्तर प्रदेश, आप निशाने पे किसको लें। ऐसे में अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश आ जाते हैं तो आप यकीन माने कि बचे हुआ पूरा चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नरेंद्र मोदी वो विल बी ऑन अ रोलर कास्टर, आप उसको मतलब ही विल बी लिटरली स्पिटिंग फायर, मतलब वो उनके पास इतना जबरदस्त एक मौका मिल जाएगा। और आपको मैं सब फिर कह रहा हूं, दावा बिना दलील के लिए होता, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जिस दिन ये खबर हुई कि राहुल और प्रियंका आ रहे हैं उसी दिन, और मैं दावे से कह सकता हूं ये भाजपा की आईटी सेल की शरारत है, जिस दिन ये खबर आई उसी दिन एक पैरेलल खबर चली कि साहब राहुल और प्रियंका राम मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने, अब जाए तो दिक्कत ना जाए तो दिक्कत।
द्रौपदी मुर्मू और चली गई
द्रौपदी मुर्मू और चलेगी जाए तो दिक्कत, ना जाए तो दिक्कत। तो ये अगर ये दोनों आ जाते हैं, यकीन माने भाजपा ने सब जगह डिक्लेयर कर दिया है, बस कैसरगंज रह गया, आज हो जाएगा। और मैं कहता आज इनको अमेठी भी करना ही पे, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर की भाई देखे वहां से क्या हो पाता है। पहली बात तो ये समझ में आ गया कि डरना मत कहने वाले साहब, बहुत डर है।
अगर नहीं जाएंगे तो भी निशाने पे रहेंगे।
मैंने कहा था सर कैच 22 सिचुएशन है, गए तो दिक्कत, नहीं गए तो दिक्कत, जिस सीट पे गए उससे दिक्कत, सीट बदल के गए तो दिक्कत, और सबसे बड़ी बात अगर चले गए तो फिर तो साफ समझिए कि भाजपा और नरेंद्र मोदी की बाछे खिल जाएंगी, युवराज कामराज पता नहीं क्या क्या बातें होने लगेंगी, और शहजादे, और फिर जैसा मैंने कहा राम मंदिर गए तो दिक्कत, नहीं गए तो दिक्कत, और फिर वो फोटोग्राफ चलने लगेगी कि देखिए साहब बाबर की कब्र पे नेहरू गई, इंदिरा गई, राजीव गए, राहुल गए, राम मंदिर नहीं गए। तो अब आप एक आप फिर से मैं कह रहा गए तो दिक्कत, नहीं गए तो दिक्कत, इतनी बड़ी अफवाह फैला दी साहब कि मीडिया वाले राम मंदिर में कैमरा लेके पहुंच गए और राम मंदिर के मुख्य पुजारी जी पूछने लगे कि सुना है राहुल गांधी आ रहे, सुना प्रियंका गांधी आ रही। तो आप सोचे कितनी जबरदस्त अफवाह। अब वो अब अच्छा उन लोगों से पूछा जाता है कि सुना है कि राहुल और प्रियंका जा रहे हैं राम मंदिर, अब वो ये भी नहीं कह सकते कि जा रहे हैं, वो ये भी नहीं कह सकते नहीं जा रहे। तो आप समझिए ना, राहुल गांधी का जो सबसे कम क्रिटिसिज्म होगा वो इस बात पे होगा कि वो यूपी नहीं लौटे। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा उन्हें यही करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, आ गए तो फिर बचा वो चुनाव एक अलग लेवल पे लड़ा जाएगा, आप समझ ले साहब। और वो जो थोड़ा बहुत बात हो रही है कि साहब वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है, वो आसमान फाड़ देगा।
आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। बहुत अच्छा विश्लेषण किया आपने और इस वार्ता को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अब जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है वो जिसको हम कह रहे हैं कि तो पहले तो वो जो ओपनिंग राउंड से अब लड़ा जाएगा, विशेषकर चौथे राउंड से जब अवध में प्रवेश करेगा और आपके कानपुर लखनऊ पहुंचेगा, तब फिर ये एक अलग ही शबाब पे चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
धन्यवाद।